हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 29 एंड 30। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिनी, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठा विरोधन विदो स्मरणं कुतस्थ। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो नापर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 29। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित को भगवान की धारणा प्रत्येक वस्तु में किस तरह से भगवान के स्वरूप का बोध किया जा सकता है, संसार की प्रत्येक वस्तु को देखकर स्मरण करके हम किस प्रकार से वैराट पुरुष का ध्यान कर सकते हैं, उसके विषय में बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर 29 कृपा करके मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। वे कहते हैं, इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्रा कर्णो दिशा श्रोत्रमामोष्य शब्द न सत्यदस्त्रो परमस्य नासि ग्राणोस्य गंधो मुखमग्निरिद्ध। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्रा कर्णो दिशा श्रोत्रमामोष्य शब्द न सत्यदस्त्रौ परमस्य नासि ग्राणोस्य गंधो मुखमग्निरिद्ध। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्रा कर्णो दिशा श्रोत्रमामोष्य शब्द न सत्यदस्त्रौ परमस्य नासि ग्राणोस्य गंधो मुखमग्निरिद्ध। शब्दार्थ, इंद्रादयो, इंद्र यानी देवराज इंद्र और आदेव यानी दूसरे जितने भी उनके साथ साथ देवी देवता हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र और दूसरे देवता, बाहव आहुर मतलब बाहव यानी बाहें हैं विराट पुरुष की। जैसे यहाँ पर हमें सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि धारणा का कैसे क्या किस तरह से धारणा की जाती है। आप लोग को याद होगा कि श्लोक नंबर 22 में, श्लोक नंबर 22 में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया था, यथा संधारयति ब्राह्मण धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरिदाशु पुरुषस्य मनोमलम, के क्योंकि धारणा से हृदय की मलिनता साफ हो जाती है। तो ये भाग्यशाली राजा परीक्षित हैं, उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण कृपा करके विस्तार से ये बताइए कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए। आप धारणा की इतनी प्रशंसा कर रहे हो तो धारणा के विषय में पूछ रहे हैं कि धारणा क्या चीज है और ये किस में करनी चाहिए और ये किस तरह से की जाती है। धारणा के विषय में तीन चीजें बताई कि यथा धारणा वो जो है वो धारणा क्या चीज है, धारणा यत्र सम्मता और किसके अंदर की जाती है, यादृशी वाह और वो किस तरह से की जाती है उसके विषय में बताइए। क्योंकि धारणा यदि उससे पहले जो श्लोक था श्लोक नंबर 21 उसमें परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने धारणा की बहुत बहुत महानता बताया था। उन्होंने कहा था, यस्याम संध्यार्यमाणायाम योगिनो भक्त लक्षण आशु संपद्यते योग आश्रय भद्रमीशत। आशु संपद्यया मतलब उसी समय जिस समय वो मन अगर कहीं इधर उधर जाता है तो योगी अपनी धारणा को बार बार अपनी धारणा में बार बार मन को लगाता है और जैसे ही उस वस्तु के ऊपर अपना मन लगाता है तो भगवान के अंदर प्रेम और आसक्ति उत्पन्न होती है। यानी स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याणमयी व्यक्तिगत स्वरूप से के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्तिमयी सेवा में उनके प्रत्यक्ष आश्रय को प्राप्त करता है। अगर भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी चिंतन करने से आनंद आएगा ही नहीं, क्योंकि आश्रयम भद्रमीश्वर योगी सदैव भगवान के अंदर ही अपना चिंतन लगाते हैं तो उसी से उसका कल्याण होता है। तो मानो परीक्षित महाराज पूछे, ठीक है उसका मन भगवान में लग रहा है, लेकिन हम क्योंकि प्राकृतिक जगत के लोग हैं तो प्रकृति वस्तु में ही हमारा कहीं ना कहीं मन लगेगा। तो आप ये बताइए कि अगर किसी भी वस्तु में हमारा मन लग जाएगा तो हमारे लिए पतन का कारण होगा। तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से हम ऐसे धारणा करें कि जो भी वस्तु हो हमारे सामने, भले कुछ भी हो, तो हमें भगवान की स्मृति हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वस्तु भगवान है, ऐसे नहीं बता रहे हैं कि वो वस्तु भगवान है, लेकिन क्योंकि उस वस्तु का या उस व्यक्ति का या उस स्थान का अस्तित्व का कारण भगवान है, इसलिए जो भी वस्तु आपके सामने आती है या जिस भी लोक का चिंतन होता है या जिस भी जगह का चिंतन होता है या जो कुछ भी आपको प्रेम करने योग्य लगता है, आकर्षित लगता है, तो उसमें किसी प्रकार से भगवान की स्वरूप को सम्मिलित कर देंगे ताकि फिर हमारा पूरा चित्त जो है वो भगवान के अंदर ही जाए। भले अभी देखो हम भगवान के विषय में भले नहीं सोच सकते, जो लोग होते हैं भगवान से प्रेम जिसका नहीं, अभी ये स्टार्ट बता रहे हैं कि अगर भगवान के अंदर चिंतन नहीं कर सकते तो कुछ भी चिंतन आ रहा है तो वो सोचो कि वो भगवान का है, वो भगवान का ही प्राकट्य है, उसका ही स्वरूप है। तो वो कैसे सोचने के लिए बताया, श्लोक नंबर 23 से उन्होंने बताया कि आपको धारणा करने के लिए सबसे पहले क्या करा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मन संधार यही दया, कि सबसे पहले तो अपने आसन को जीतना है। पहली शर्त क्या है कि एक निश्चित आसन पे बैठकर धारणा करनी है, और उसके साथ क्या, जितासनो जित संगो, यानी भौतिक जितने भी लोग हैं उनसे अपना आकर्षण समाप्त करना है, जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, स्थूले भगवते रूपे और भगवान के स्थूल रूप में मन संधार ये दया, मन को एकत्रित करना है। ये मन जो है वो ये सोचना है कि ये पूरा विश्व भगवान का ही रूप है, और उसी में मन को लगा ले तो भी ये सोचे कि ये भगवान का ही एक प्राकट्य है। तो ये बहुत अजीब बात है, समझ में कैसा लगेगा कि अब ये स्थूल जो पूरा संसार है, क्या है संसार में, पहाड़ है, नदियां हैं, वृक्ष हैं, तो इनमें मन लगेगा तो भगवान का चिंतन कैसे किया जाए। तो उसके विषय में आप बता रहे हैं कि किस तरह से करना। श्लोक नंबर 24 में बताया, विशेषस्तस्य देहोयम् स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं यजत्ते विश्वं भूतं भव्य भवश्यसत्। कि इस भौतिक जगत की विशेषस्तस्य देहोयम्, जो भी विशेष वस्तु है, देखो एक होता है विशेष और दूसरा होता है निर्विशेष। तो जो मायावादी लोग होते हैं वो भगवान को निर्विशेष कहते हैं, यानी कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं। वैसे तो भगवान का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, विशेष का मतलब होता है प्राकृतिक, ये प्रकृति में जो कुछ विशेष वस्तुएं हैं उनको विशेष कहा जाता है। ये भगवान का प्राकृतिक कोई रूप नहीं है, लेकिन मायावादी लोग क्या कहते, भगवान का कोई स्वरूप है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे, विशेषस्तस्य देहोयम्, ये पूरा ब्रह्मांड एक तरह से भगवान का ही स्वरूप है, समस्त वस्तुएं भगवान के ही कारण है, तो भगवान का ही इसके अंदर प्राकट्य है, हमको उसको रियलाइज करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं, घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य क्या ही व्यक्तिगत शरीर है, विशेषस्तस्य देहोयम्। तो ये जो कुछ भी है और उसमें क्या है, यत्रेदं यज्यते विश्वम्, इस भौतिक जगत में इस जो कुछ भी है जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फलस्वरूप भूतम भव्यम भविष्यच, चाहे वो भूतकाल में हो गया हो, अभी हो रहा हो या भविष्य में होने वाला है, जो कुछ भी है वो वास्तव में भगवान का ही स्वरूप का प्राकट्य है। तो आगे कहते हैं कि अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्ता वर्ण संयुत वैराज पुरुषो यो सौ भगवान धारणाश्रय। अत्यंत ही सुंदर यहाँ पर बता रहे हैं अंडकोशी शरीर इसमें। अंडकोशी यानी कि ब्रह्मांड जो ये बना हुआ है, अंड जिसको बोलते हैं, सप्त आवरण से बना हुआ है। किससे? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन तत्वों से बना हुआ हमारा ये शरीर है। और सप्तावरण संयुत, ये सात आवरणों से जो संयुत है, तो उसके अंदर क्या है? वैराज्य पुरुषो योसव, वैराज्य पुरुष यानी कि जो विराट पुरुष है उसका भगवान धारण है। इन भौतिक वस्तुओं का धारण ये धारणा का विषय नहीं है, वो वैराज्य पुरुष ही धारणा का विषय है, भगवान ही धारणा का विषय है। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट से भगवान के अंदर मन नहीं लगता, तो एक इस बात को एकदम क्लियर कह रहे हैं कि वास्तव में ध्यान किसी प्राकृत वस्तु का नहीं करना है, देखना वस्तु को है। जैसे कोई बादल को देखता है तो कहता है कि भगवान के ना घने बाल हैं, तो बादल भगवान के बाल हैं। मन जहाँ पर भी जाए तो वहाँ पर भगवान के एक अंग की कल्पना करना। तो साधक स्वयं से ये कल्पना नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से कल्पना की जा सकती है। तो श्लोक नंबर 26 से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है कि किस तरह से भगवान की धारणा करनी है। वे कहते हैं पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्श्वी प्रपदे रसातनम महातलम विश्वसजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। पाताल में से ही पादमूलम, पाताल क्या है? भगवान के पाद का मूल, मूल यानी तलवा। पठन्ति पार्श्वी यानी के जो एड़ी है भगवान की वो क्या है? प्रपदे रसातलम, प्रपदे मतलब भगवान की जो पंजे की उंगलियां हैं वो, और भगवान की एड़ियां वो क्या है? रसातलम, भगवान की रसातल। रसातल ये भगवान का ये पोर्शन है, पांव के ऊपर वाला पोर्शन। महातलम विश्व सजोत गुल्फो, गुल्फो कहते हैं टखने को, जो एड़ी के ऊपर टखना गोल बना होता है ना, तो वो महातल जो है वो भगवान का वो टखना है। और उसके आगे तलातलम वह पुरुषस्य जंगे, जो पिंडलियां हैं यानी कि जो एड़ी के और घुटने के बीच का पोर्शन है वो तलातल लोक है। यानी कि अब किसी भी लोक में आपका मन जाता है, नीचे से शुरू कर रहे हैं, एकदम महातल उसे पाताल से लेकर, पाताल से ऊपर आते आते आते, तो किसी भी लोक के किसी भी वस्तु में जीव का मन जाएगा ना, तो वहां पर क्या सोचना है कि भगवान का ही एक प्राकृत्य है। तो ये किसने कहा है? ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, उन्होंने भगवान की धारणा करने के लिए इस तरह से निर्देशन दिया। द्विजानुनि सुतलं विश्वमूर्ति रुरुद्वयं वीतलं च तलं च महीतलं तच्च खनं महीपते नाभस्थलं नाभिसारो गृणन्ति। द्विजानुनि यानी कि दो जो घुटने हैं, सुतलं विश्वमूर्ति, ये सुतल लोक जो है वो भगवान के दो घुटने हैं, और उसके बाद जो घुटने के ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं उरुद्वयम, यानी दो जांघें जो हैं वो वितलम, वितलम चातलम, वितल लोक और अतल लोक, ये दोनों जांघें हैं। महीतलम तज्ज घनम महीपते, महीतल यानी महातल लोक जो है वो जगनम कटी यानी कमर है, धीरे धीरे ऊपर आ रहे ना, तो कमर महीपते यानी हे राजा, जो कमर है जो माहीतल है वो भगवान का कटी प्रदेश है। नाभस्थलम नाभिसरो गृणन्ति, नाभिसरो यानी जो भगवान की नाभि का गड्ढा है वो क्या है? नाभस्थलम, आकाश जो है वो भगवान की नाभि का गड्ढा है। और उसके आगे कहते हैं उरस्थलम ज्योतिरानीकमस्य ग्रीवा महर्वादनं वै जनोस्य त तपो विराटिम विदुरादि पुंस सत्यम तु शीर्षाणि सहस्त्र शीर्ष उरल स्थलम ज्योतिरनेक मस्य यानी आकाश के ऊपर जो भी ज्योति चमकती हुई वस्तुएं हैं जैसे सूर्य चंद्रमा सितारे जितने भी नक्षत्र हैं वो क्या है भगवान की छाती हैं। ग्रीवा ग्रीवा यानी गर्दन ग्रीवा महवदनम वै जनोस्य यानी जनलोक जो है वो भगवान का मुख है। गर्दन ग्रीवा क्या है महर महरलोक जो है वो भगवान की गर्दन है और जनलोक जो है वो भगवान का मुख है। तपो विराटिम विदुरादि पुंस तपलोक जो है वो उस विराट स्वरूप विराटिम मतलब मस्तक है तपलोक भगवान का मस्तक है। और सत्यम तु शीर्षाणि सहस्त्र शीर्षा और सत्यलोक सहस्त्र शीर्ष यानी भगवान के अनेकों हजारों सिर हैं और सत्यलोक जो है वो भगवान का सिर है। तो इसका मतलब है कि जो भी वस्तु है जो भी व्यक्ति है वो वास्तव में भगवान के अतिरिक्त तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो कहीं भी मन जाए अब बस वहां पर क्या करना है ये सोचना है कि ये भगवान का ही कोई अंग है भगवान को सम्मिलित करना है। हृदय कुछ और सोचने की का प्रयास कर रहा है कुछ देखने के लिए मन उतावला हो रहा है तो वहां पर मन को ये बार बार धारणा करनी है कि कुछ भी तो नहीं है ये भगवान का तो स्वरूप है। और इससे क्या होगा हर किसी के अंदर संभाव होगा और ये पता चलेगा हृदय के अंदर के वास्तविक संबंध भगवान से है और ये वस्तु और व्यक्ति अगर अस्तित्व रखते हैं तो केवल भगवान के कारण रखते हैं। और आज बता रहे हैं इंद्रादयो बाहव आहुर उस्त्रा आहुर उस्त्रा यानी कि बहुत ही चमकदार तेजस्वी शरीर होता है उन इंद्रों का। उस्त्रा का मतलब है देवता बहुत ही तेजस्वी होते हैं और वो कौन इंद्रादयो इंद्र और दूसरे जितने भी देवता हैं वो सब क्या है भगवान की भुजाएं हैं यानी भगवान की भुजाएं बहुत ज्यादा तेजस्वी हैं बहुत ज्यादा शक्तिमान हैं। सारे देवी देवता में किसी के अंदर भी मन जाए तो ये सोचना चाहिए कि भगवान की भुजाएं हैं। और करणों दिशा दिशा मना जितनी भी दिशाएं हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और जितनी भी दिशाएं हैं वो सब क्या है भगवान के करण हैं। करण का मतलब है ये जो करण जो कान बना हुआ है ना वो भगवान की वो जो है सारी दिशाएं भगवान का कान है। और आगे कहा श्रोत्र ममश्य शब्द यानी श्रोत्र जो शब्द है ना जो भी साउंड निकलता है इस भौतिक जगत में जो भी साउंड है या किसी भी जगत में वो सब भगवान का श्रोत्र इंद्रिय है। अब यहाँ पर दो चीजें बताई गई हैं एक करण और एक श्रोत्र यानी जो कान होता है वो एक अलग चीज है वो एक साकेट है और उसके अंदर जो सुनने की शक्ति है वो एक अलग चीज है। वो कैसे है जैसे अगर एक सेवर होता है लाइट ट्यूबलाइट होती है वो एक अलग से ट्यूबलाइट होती है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक अलग चीज होती है। उसी तरह से कान एक अलग चीज है और सुनने की जो इंद्रिय है उसको कान को करण बोलते हैं और श्रोत्र इंद्रिय बोलते हैं जिसके द्वारा हम सुनते हैं। तो कान क्या है ये सारी दिशाएं भगवान के कान हैं और जितने भी शब्द हैं वो भगवान के श्रोत्र इंद्रिय हैं यानी यहाँ से हम ये सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा भगवान सुनते हैं हर एक शब्द जो भगवान यहाँ जो जिस भी लोक में कोई भी शब्द का उच्चारण होता है तो भगवान की श्रोत्र इंद्रिय है। अगर भगवान न सुनते तो संसार में कोई भी नहीं सुनता ये श्रवण इंद्रिय वो भगवान ये यहाँ तक ये सोचना चाहिए कि कोई भी इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि इस भौतिक जगत में या हमारी कोई भी प्रार्थना ऐसी है जो भगवान के कान तक नहीं जाती है। ये शब्द ही भगवान की श्रवण इंद्रिय है जो कुछ हम बोल रहे हैं वो भगवान की श्रवण इंद्रिय है यानी कि जितने भी शब्द जी इस भौतिक जगत में है वो सारे भगवान के
श्रवण इंद्रिय हैं। तो भगवान कितने कितना सुनते हैं तभी तो हम सुनते हैं। तो हमारे मुख से जो निकल रहा है, हमारे शब्द कहीं से भी निकल रहे हैं, किधर किसी कोई भी जब बोल रहा है, वो सब भगवान की श्रवण इंद्रिय है। नासत्य दस्त्रौ परमस्य नासे, नासत्य अभी नासिका के विषय बता रहे, नासे मतलब नथुने, जो भगवान के नथुने हैं वो कौन है, नासत्य दस्यो अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार भगवान के नथुने हैं। ये नथने हुए और एक होती है ग्रणंत, ग्रणों मतलब जिससे वो सुगंध ग्रहण करते हैं, सुगंध की इंद्रिया, वो नासिका एक बना हुआ है, ठीक है, एक नोज होती है और उसके अंदर एक ग्रहण इंद्रिय होती है जिससे वो ग्रहण करता है सुगंध को। तो वो कौन है, ग्रहणों से गंधो, गंधो मतलब जो भी संसार में गंध है वो सब गंध मतलब फ्रेग्रेंस कुछ भी है, वो भगवान की ग्रहण इंद्रिय है, भगवान की ग्रहण सूंघने की इंद्रिय है। ग्रहण ग्रहणस्य गंधो मुखम अग्निदिद्धा, मुखम भगवान का जो मुंह है, अग्निदिद्धा मतलब प्रज्वलित अग्नि है, जो कुछ भी यहाँ पर अग्नि की तरह दिख रहा है वो सब भगवान का मुख है। और एक दिन ऐसा आता है जिस तरह अग्नि में कुछ भी डालते हैं तो वो भस्म हो जाता है, इसी तरह हमारे अपराध जितने भी हैं, हमारे जितने भी कर्म हैं, यदि हम भगवान के सम्मुख आ जाते हैं, भगवान की शरण में आ जाते हैं, तो हमारे कर्मों को कर्म के जो फल होते हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं और हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अनुवाद देखिए, इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, दसों दिशाएं उसके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवण इंद्रिय हैं, दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने हैं तथा भौतिक सुगंध उनकी ग्रहण इंद्रिय है, उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय में दिए गए भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में विस्तार से दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता 11.30 में इस तरह से वर्णन है, हे विष्णु मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी प्रज्वलित मुख में सबको निगले जा रहे हैं और समूचे ब्रह्मांड को अपनी असह्य किरणों की लपेट में ले रहे हैं। आप समस्त जगत को झुलसाते हुए अपने को व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जिज्ञासु के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दोनों ही परम सत्य कृष्ण के विज्ञान हैं, अतएव ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कुछ भगवत गीता में बताया गया है उसी को विस्तार से और भी डिटेल से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान के विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा और उसी विराट स्वरूप को आज सुखदेव गोस्वामी हमें दिखा रहे हैं कि प्रत्येक कण में भगवान का ही एक अस्तित्व दिखता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशासित जीव सम्मिलित हैं। जो कुछ भी है वो भगवान की धारणा में ही है, तो जीव का सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश भी भगवान के शक्तियावेश दूत द्वारा नियंत्रित रहता है। क्योंकि भगवान के विराट रूप में देवता भी सन्निहित रहते हैं, अतएव भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में की जाए या भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनके शाश्वत दिव्य स्वरूप में की जाए, वह देवताओं तथा अन्य अंशों को भी प्रसन्न करने वाली होती है। जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ में पानी सिंचने से वृक्ष के अन्य सभी भागों को शक्ति मिलती है, फलस्वरूप यदि भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के विश्व रूप की पूजा करता है तो वह सन्मार्ग पर अग्रसर होता है।
मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं के पास जाकर दिग्भ्रमित न हो। वास्तविक सत्ता तो साक्षात भगवान है, अन्य सभी काल्पनिक हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं भगवान में ही सन्निविष्ट है। श्रील प्रभुपाद की जय। अत्यंत सुंदर रीति से श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि जब प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि देवी देवता भी भगवान के ही अंश हैं, तो फिर हमें डायरेक्ट से भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जब हम जड़ में पानी देते हैं तो अवश्य पूरे वृक्ष को सींच सकते हैं, लेकिन एक एक करके यदि हम एक एक पत्ते को सींचने जाएंगे तो समय और एनर्जी का वेस्ट होगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो ये समझ जाता है कि इस विराट जगत जो वो भगवान का ही स्वरूप है, तो विराट जगत की प्रत्येक वस्तु की ओर आकर्षित होने के बजाय हमें भगवान की ओर ही आकर्षित होना चाहिए। इसी से हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में हमें यही आदेश देता है कि हर एक वस्तु को देखकर हमें ये सोचना चाहिए कि वस्तु भगवान का ही अंश है। श्लोक नंबर 30। द्युरक्षिणी चक्षुराभूत पतंग पक्ष्माणि विश्रो रहनी युभे च तद्भ्रू विजृंभ परमेष्ठि दृश्यं आपोस्य तालु रस एव जीवा। द्युरक्षिणी चक्षुराभूत पतंग पक्ष्माणि विश्रो रहनी उभे तद्भ्रू विजृंभ परमेष्ठि दृश्यं आपोस्य तालु रस एव जीवा। द्यौरक्षिणी, द्यौर अक्षिणी यानी द्यौ का मतलब होता है अंतरिक्ष, जो भी अंतरिक्ष में स्पेस में जो कुछ भी है, चाहे वो सूर्य है चंद्र। अक्षिणी है यानी वो नेत्र के गोल है, जैसे हम नासिका के नथने और कर्ण की इंद्रिय बोल रहे थे ना, ऐसे नेत्र के गोल क्या है, जो भी अंतरिक्ष में है वो सब नेत्र के गोल हैं। और आगे कहा चक्षुर भूत पतंगा, चक्षु मतलब आंखें जिनसे वो देखते हैं, अभूत पतंगा ऐसा वो पतंग माना सूर्य, और सूर्य जो है वो भगवान की आंखों की जो दृष्टि है वो है। गड्ढा क्या है, अंतरिक्ष में जो भी है वो भगवान के आंखों के गड्ढे हैं, और जो हम देख रहे हैं अभी इस भौतिक जगत में भी देखा जाए तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं अल्टीमेटली वो सूर्य के कारण होता है। अगर सूर्य ना होता तो कोई कुछ नहीं देख सकता। बोलो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह से सूर्य की ही उपज है। अगर सूर्य होता ही नहीं तो कोई भी जीव कोई वस्तु को हम अपने शरीर को भी नहीं देख सकते, अपने हाथ को भी नहीं देख सकते, अपने इर्द गिर्द में कहीं कोई चीज नहीं देख सकते, कोई साइंटिस्ट कोई चीज इन्वेंट तक नहीं कर सकता। ये इलेक्ट्रिसिटी और जो भी इन्वेंट हुआ वो वास्तव में इसलिए क्योंकि सूर्य की रोशनी थी, जिसके कारण हमारे नेत्रों का होना ना होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सूर्य का होना। अगर आप यहाँ पर हमारी तो आंखें हैं ना, हम देख सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, सूर्य की रोशनी ना हो, तो फिर भले कितना ही हम कोशिश करें हम देख नहीं सकते हैं। तो ये सूर्य क्या है, भगवान की चक्षुर अभूत पतंगा, पतंग ये सूर्य जो है वो भगवान की आंखें हैं। और आगे कहा पक्ष्माणि विष्णु अहनी उभे, अहनी मतलब दिन और रात, दिन और रात भगवान के पलक है। जैसे भगवान पलक झपकाते हैं, ऐसे हम लोग एक सेकंड में पलक झपका देते हैं, और भगवान जब पलक और झपकाते हैं तो दिन और रात होते हैं। मतलब केवल भगवान यदि पलक झपका दें तो पूरे संसार में अंधकार फैल जाता है, कहीं कुछ नहीं दिखता, रात हो जाती है, और जब पुनः भगवान पलक को उठाते हैं तो सारे संसार में रोशनी हो जाती है, दिन हो जाता है। तो ये कितना महान, कितनी महान सोच है कि हमारा जीवन निर्भर करता है भगवान के। इस भौतिक जगत में यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो ना, जो पलक झपकाता है, नीचे पलक करे, और पूरा संसार में जो है ना वो
रात हो जाए और वो ऊपर उठाए तो दिन हो जाए, तो कितनी सब उसकी प्रशंसा करें, कितना वो फेमस हो जाए, कितना उसके लिए। लेकिन भगवान के विषय में कोई नहीं सोचता कि भगवान ही के कारण हमें ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान के ही कारण हो रहा है। हमारा जीवन निर्भर करता है भगवान के ऊपर, हमारा शरीर निर्भर करता है भगवान के ऊपर, हमारा अस्तित्व डिपेंड करता है भगवान के ऊपर। तो दिन रात यदि हम भगवान की स्तुति करें, दिन रात यदि हम भगवान का गुणगान करें, उनकी प्रशंसा करें ना, तो भी वो कम है। तो यहाँ आगे बता रहे हैं, तद्रु विजृंभ परमेष्ठी धरण्या देश्रिया, यानी परमेष्ठी, परमेष्ठी का मतलब होता है जो जितने भी जीव हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ जीव है वो है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी परमेष्ठी देश्रिया, देश्रिया मतलब जो उसका जो पद है, ब्रह्मा का पद है वो क्या है, केवल तद्ब्रू विजृंभ, ब्रू यानी भावों को, जब भगवान ब्रिकुटी को यदि हिलाते हैं, खाली अपने जो आईब्रोज हैं उनको ऐसे करके हिलाया भगवान ने, उतनी देर का ब्रह्मा जी का पद है बस। हमें यहाँ भौतिक जगत में अपने पद के ऊपर बहुत है ना गर्व होता है ना, कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो हमारा पद तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी तो आयु इतनी थोड़ी है कि कुछ ही समय के बाद हम लोग हमसे ये पद छिन जाता है। लेकिन पूरी आयु भी वो पद हमें नहीं मिलता है, क्योंकि समय के साथ साथ हमारा शरीर इतना जीर्ण हो जाता है कि उस पद को संभालने के योग्य नहीं बनते। लेकिन ब्रह्मा जी का पद हम विचार कर सकते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन इस पृथ्वी पर 8,64,00,000 वर्ष के बराबर है, 8,64,00,000। और ब्रह्मा जी का जो जन्म होता है 1,54,00,000,000, 1,54,00,000 और 40,00,000,000,000 जो है वो ब्रह्मा जी जीते हैं। और इतना बड़ा ब्रह्मा जी का जो पद है वो केवल भगवान के ब्रिकुटी मात्र से के बराबर है, ब्रिकुटी मात्र भगवान हिलाते हैं तो ब्रह्मा जी का पद जो है वो समाप्त हो जाता है। और आगे कहते हैं, आपोस्य तालु, आपो यानी जो वरुण देव हैं, जल के देवता जो हैं, तालु भगवान के तालु हैं, और रस एव जिह्वा, इस संसार में जो कुछ भी रस है वो भगवान की जिह्वा है। यानी कि हम किसी भी वस्तु का यदि टेस्ट आ रहा है ना, तो भगवान की जिह्वा का टेस्ट है। वास्तव में भगवान की जिह्वा ही टेस्ट बनकर, किसी भी वस्तु को यदि आप टेस्ट करते हो तो आपको टेस्ट ही लगता है, तो भगवान की जिह्वा का टेस्ट है वो। इस भौतिक जगत का हर एक, कितना भगवान विशाल है हम सोच नहीं सकते। ये जो आदि, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत बहुत ही सुंदर बात बताएंगे कि शास्त्र की बात को एज इट इज स्वीकार करना, आपको कितना समझ में आया वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने कितना इसको स्वीकार किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वीकार क्या करना है, कि जो कुछ भी है वो सब भगवान ही है, भगवान का ही एक स्वरूप दिख रहा है, इसलिए प्रेम करने योग्य यदि कोई है तो वो भगवान ही है। अनुवाद देखिए, बाह्य अंतरिक्ष, उनकी आंखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनके नेत्र गोलक हैं, दिन तथा रात उनकी पलकें हैं, और उनकी भ्रिकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है, जल का अधीश्वर वरुण उसका तालु है, तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीव है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्य ज्ञान के अनुसार इस श्लोक का वर्णन कुछ विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य को कभी नेत्र गोलक कहा गया तो कभी बाह्य अंतरिक्ष कहा गया, लेकिन शास्त्रों के आदेशों में सामान्य ज्ञान का स्थान नहीं होता है। हमें शास्त्रों के आदेशों को स्वीकार करना चाहिए और सामान्य ज्ञान पर केंद्रित ना रहकर विराट रूप में एकाग्रचित होना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो बताया जा रहा है उसको स्वीकार करो और अपने मन को विराट रूप में एकाग्र करो, कि जो कुछ भी दिख रहा है वो भगवान ही है, तो एकाग्रचित होना चाहिए। सामान्य ज्ञान सदैव अधूरा है, जबकि शास्त्रों का वर्णन सदा त्रुटि रहित एवं पूर्ण होता है। जो कुछ शास्त्र में लिखा है वो परफेक्ट है। तो यदि कोई दोष होता है, तो हमें यदि समझ में कोई बात नहीं आती है, तो दोष कहाँ का होता है? श्री रूपा जी बता रहे हैं कि यदि कोई दोष होता है तो वह हमारी अपूर्णता के कारण होता है, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, हमारी सोच पूर्ण नहीं है, हमारी बुद्धि पूर्ण नहीं है। इसके कारण हमको शास्त्र की बात सही तरह से समझ में नहीं आ रही। शास्त्रों के कारण वो दोष नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है कि जो कुछ है उसको एज इट इज स्वीकार करो। और क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु, चाहे वो किसी भी लोक की हो, अतल लोक, वितल लोक, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक तक जो कुछ भी है, वो भगवान का ही एक प्राकट्य है, एक अंश है। तो हमें जो किसी भी वस्तु में यदि हमारा मन जाता है, तो उससे हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान का ही स्वरूप है, और वास्तव में अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी धारणा को केंद्रित करना है भगवान के अंदर। क्योंकि जब अंत समय आता है, अगर किसी वस्तु को वस्तु समझ के हमने उसके अंदर अपना मन केंद्रित कर दिया, तो फिर तो वो वस्तु हमें पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएगी। तो हमें क्या सोचना है, जो कुछ जिसके अंदर भी हमारा मन जाता है, चाहे वो पति हो, बच्चे हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, किसके भी अंदर जाता है मन, तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा है, ये भगवान के ही है, भगवान का ही एक अंश स्वरूप है। हर किसी को देखकर जिससे आप प्रेम करते हो, आप सोचो कि ये कृष्ण की कृपा है, कृष्ण का अंश है, ये कृष्ण ही का है, मैं भी कृष्ण का हूँ, इसलिए मुझे केवल कृष्ण से ही प्रेम करना चाहिए। तो अंतकाले भगवान कहते माम एव स्मरण। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अंतिम समय में कैसे धारणा करनी चाहिए उसके विषय में बता रहे हैं। तो ये कैसे बता रहे हैं कि शुरू से ही हमको ये अभ्यास करना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु में भगवान का ही प्राकट्य है। ऐसे करते 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 अंतिम समय में किसी भी मन चला जाएगा, तो उस समय भी हमें प्रैक्टिस होगी, तो हम आसानी से ये बात को स्मरण कर सकेंगे कि ये सब भगवान के ही है, और मुझे भगवान के अंदर ही अपने मन को लगाना है ताकि मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं आप सबकी सेवा और अपनी साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।